सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत महापुरुषों के भाव गीत कविता व्याख्यान के रूप में अभी आप श्रवण कर रहे थे, जो आधारित थे प्रेम भक्ति विश्वास के ऊपर, मानवता इंसानियत के ऊपर, सहनशीलता के ऊपर, जिस पैगाम को इतने विशाल रूप में अभी चंद रोज़ पहले ही इन्हीं मैदानों में पुरजोर तरीके से इसको फैलाव दिया गया, मिशन के उसूल, मिशन की समाज को और देश विश्व को जो देन है उसको बखूबी यहाँ पर उजागर किया गया, जिसके अनेकों अनेकों सजनों के ऊपर सुंदर प्रभाव पड़े हैं, जहाँ पर ऐसे विशाल समागम के लिए लगातार संतों के योगदान रहे हैं, बच्चे जवान बुज़ुर्ग बहनें माताएं, जहाँ जहाँ पर भी जिस रूप में भी ऐसे परोपकार में योगदान देते हैं, वाकई ही उसी के नतीजे होते हैं कि ये जो मकसद मंतव जो लगातार जहन दिलो दिमाग में भक्तों के बसा होता है कि दुनिया में ऐसा एक सुंदर रूप देखने को मिले जहाँ पर गिरती हुई इंसानियत को खड़ा किया जाए, उसको बरकरार रखा जाए, उसको मजबूती दी जाए, ताकि धर्म भी ज़िंदा रहे। क्योंकि अगर धर्म कमज़ोर माना जाता है या धर्म खतरे में माना जाता है, अक्सर लोग ये समझते हैं कि कोई इमारतों को खतरा हो गया है, कोई रीति रिवाजों को खतरा हो गया है, कोई रहन सहन को खतरा हो गया है या रिचुअल्स को खतरा हो गया है। दरअसल भक्त महापुरुष संत वो ये जानते हैं कि जब इंसानियत ही सच्चा धर्म है, तो धर्म कमज़ोर तब होता है जब इंसानियत कमज़ोर हो जाती है। इसलिए धर्म को बरकरार रखने के लिए, कायम रखने के लिए, इंसानियत को बरकरार रखना, कायम रखना, यही भक्त जानते हैं और संसार को भी यही बात दिलो दिमाग में बसाने के प्रयास करते हैं। क्योंकि संसार इस असल धर्म को भूलते चले जा रहे हैं, ये असल धर्म कमज़ोर हो रहा है और रीति रिवाज और क्रियाएं और कर्म कांड उनको मजबूती मिलती चली जा रही है। तो ज़रूरत जिसको मजबूत करने की थी वो तो कमज़ोर होता चला गया। तो ये समागम पर भी आपने एक सुंदर देन दी और यही प्रयास किया कि वाकई ही इस इंसानियत वाले धर्म को ही कायम रखना है, जिसका स्थापन वलियों गुरु पीर पैगंबरों ने युगों युगों से किया है। अभी चंद रोज़ पहले ही श्री गुरु नानक देव जी महाराज का सभी जानते हैं गुरुपर्व मनाया गया, तो उन्होंने कौन से धर्म की स्थापना की थी? यही इंसानियत वाले धर्म की स्थापना की थी। यही इंसानियत जिसमें प्यार, खलूस, मोहब्बत, सहनशीलता, विशालता हुआ करती है, जिसमें सच का वणज और सच का व्यापार किया जाता है, जहाँ पर वही सच्चे सौदे के जिक्र श्री गुरु नानक देव जी महाराज के जीवन से हमें मिलते हैं कि पिता व्यापार को क्या मानता है और बेटा नानक वो व्यापार को क्या मानता है, वो सौदा किसको सच्चा सौदा मानता है। तो इस तरह से श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने इसी सत्य का वणज और व्यापार किया। कितने भ्रम और भ्रांतियाँ लोगों के मनों में जाति पाति की तब भी थी, मज़ो मिल्लत की तब भी थी, किस तरह से असहनशीलता तब भी थी। ये एक लगातार संसार में ऐसे वातावरण को जिसके बयान महापुरुषों संतों ने किए कि खै खै जले बांस अंग्यारा, कि वरना वरण न भावे खै खै जले बांस अंग्यारा, कि इस तरह से इंसान एक दूसरे के साथ उलझते आए हैं, जाति मज़हब के नाम पर, भाषाओं के नाम पर, संस्कृतियों के नाम पर, रीति रिवाजों के आधार पर, तो इस तरह से ये उलझाव ये रहे हैं। और अब तो साइंस ने तरक्की कर ली, तो अब इस उलझाव की बात करें तो झगड़ा है ज़मीन पे, उलझाव है आसमान पे, कि केवल ज़मीन के ऊपर ही नहीं, अब तो इंसान स्पेस में भी पहुंच गया है। अब स्पेस से भी जहां पर कुछ लाभदायक उपयोग हुए हैं, वहीं पर स्पेस से भी आसमान से भी एक दूसरे पे वार करने के भी सामान इंसान के पास हैं। यानी कि जो केवल पहले ज़मीन पर महदूद था, अब उसकी रीच आसमान पे भी पहुंच गई। यानी कि वही बात कि खै खै जले बांस अंग्यारा, वरना वरण ना भावे, ये वर्ण जात, ये भाषाएं, ये मज़ो मिल्लत, तो इनमें ही इंसान उलझा हुआ है। जो सार है वो सार तो अलोप होती चली जा रही है, वो सार तो हाथों से निकलता चला जा रहा है। जिसके बारे में कहा है कि संत है माखन खाया छाछ पिए संसार, कि जो सार था, जो माखन था, वो तो संतों ने बीन लिया, संतों ने जाना कि किसकी कीमत है, इसलिए उन्होंने इंसानियत को अपनाया, सहनशीलता को अपनाया, प्रेम को अपनाया, करुणा को अपनाया, इस सत्य को आधार बनाया, मानवता की डगर पर चले, और छाछ पिए संसार, और संसार ने इस माखन को तज के, जैसे हीरे को तज के कांच को महत्ता दी। ये ना जाने नादान कि कीमत हीरे की है कांच की बनिस्बत, कि कांच के मुकाबले में हीरे की कीमत है, तो हीरे को तज दिया गया और तज रहे हैं, और कांच के साथ इस तरह से उसको महत्व दिए चले जा रहे हैं। तो ये महापुरुष संत जन ही इंसानों को ये समझाने के प्रयास करते हैं कि इंसानों समझो संभलो कि किस तरफ तुमने अपना रुख किया हुआ है, तुम्हारी मान्यताएं कैसे आधार के ऊपर टिकी हुई हैं, सच के साथ तुम्हारा सामना हुआ नहीं है, इस परवरदिगार इस मालिक खालिक निराकार का बोध हुआ नहीं है, आत्मा भी अभी भी भ्रम में पल रही है, और तुम्हारा मन भी अंधकार में है, इसी के लिए तुम्हारी दिशा ही कुछ और बनी हुई है, इसीलिए ही प्यार कमज़ोर होते जा रहे हैं, मानवता कमज़ोर होती चली जा रही है, सहनशीलता कमज़ोर होती चली जा रही है, सब्र संतोख धीरज कमज़ोर होता चला जा रहा है, ये सब कुछ कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, जिसके कारण जीवन में आनंद आता है, वो सारे ही पहलू कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए उन कमज़ोर होते हुए पहलुओं को मजबूती देने के लिए ही लगातार भक्त जन महापुरुष संत जन ये प्रयास करते आए हैं, ये संसार पे आवाज़ पहुंचाते आए हैं, और जगह जगह पर भक्त यही देन देते चले आ रहे हैं। समागम के अवसर पर भी आपने देखा, असमिया भाषा में भी वही भक्ति प्रेम इंसानियत मानवता का पैगाम सुनने को मिला, वही उड़िया बंगला में सुनने को मिला, वही मराठी गुजराती में राजस्थानी में इस तरह से अनेकों अनेकों भाषाओं में यही पैगाम आपने सुना। वहीं से चलकर आए थे भक्त, वो वही रहकर जो ये परोपकार कर रहे हैं, वही उसी वातावरण समाज माहौल में रहकर ये सत्य का संदेश दे रहे हैं। अगर हिमाचली भाषा या गढ़वाली भाषा में सुना तो वहीं के वासी, वहीं रहकर उन्होंने ये दात भी पाई, ये समझ भी पाई, और संसार को भी उन्होंने यही पैगाम दिया और देते चले जा रहे हैं। अपने जीवन का बयान देकर कि हम भी इस एक रास्ते पे चलते चले जा रहे थे, हमारी भी मान्यताएं थी, हमारा भी आधार था, लेकिन हमारा आधार अज्ञानता थी, लेकिन अब ज्ञान आधार बन गया है, अब ये सत्य आधार बन गया है, जिसने तमाम भ्रम भ्रांतियाँ मिटा दी हैं, जिनको हम प्रभु का दर्जा दे रहे थे, अब जान गए कि कादर और कुदरत में क्या अंतर है। हम कुदरत को ही कादर मान बैठे थे, हम रचना को ही रचनहार मान बैठे थे। सूर्य चांद सितारे, ये तमाम रचना, ये यूनिवर्स, ये प्रभु की रचना है, और हम इन्हीं कुदरत की रचनाओं में इन सब को हम परमात्मा मान बैठे थे, क्योंकि परमात्मा क्या बोध नहीं हुआ था। लेकिन अब जाना है कि ये सत्य परमात्मा ईश्वर निराकार ही है, जो सबका रचनहार है, जो सारी कायनात जिसकी बदौलत है। यही एक वो समुद्र है जिसमें से लहरें उठती हैं। हमने लहरों को ही एक समुद्र मान लिया था, ये भूल गए कि अगर समुद्र ना होता तो लहरें कहाँ होती। लहरों का अस्तित्व तो समुद्र के कारण है, सागर के कारण है। अगर सागर ना हो तो समुद्र लहरें नहीं हो सकते हैं। लहरों के बगैर समुद्र हो सकता है, लेकिन समुद्र के बगैर लहरें नहीं हो सकते हैं। ये नहीं जाना था हमने, तो अब जान गए हैं, और जहाँ से हमने जाना है उस तरफ अपने कदम बढ़ाने के लिए जगह जगह पर प्रेरित कर रहे हैं कि हमने पाया है, तुम भी पा लो। मीरा ने जो पाया था हमने पाया है, और इसकी गवाही गीता कामर संदेश दे रही है। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, और सदियों बाद युगों बाद मीरा के हिस्से में वो दौलत आ रही है, तो वो बयान दे रही है कि वही गवाही मुझे मिल रही है। जो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं अपने निज स्वरूप, असल स्वरूप, अविनाशी स्वरूप, नाश ना होने वाला रूप, अग्नि से ना जलने वाला रूप, शाश्वत स्वयंभू रूप, जो रूप है वो जाना, और वो तमाम वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ उस पर मोहर लगा रहे हैं कि वाकई इसी का तो जिक्र था, इसी के बारे में तो वर्णन थे, लेकिन हम उसको पकड़ ना पाए। पढ़ते हुए भी, सुनते हुए भी, फिर भी पकड़ में नहीं आया, फिर भी हमारी मान्यताएं कैसी कैसी रहीं। ये नहीं जाना था जब तक ये बोध ना हुआ। ये बोध हुआ तो समझ आई कि ये तो इतनी सरल सी बात थी, लेकिन पकड़ में ना आ सके। तो इस प्रकार से ये महापुरुष संत जन भक्त जन ही है जो संसार के लिए कल्याण का साधन बने हैं। तो आज भी इस दौर में भी भक्त जन ही, ब्रह्म ज्ञानी ही संसार के इस अंधकार को मिटाने में अपने योगदान दे रहे हैं, भ्रम और भ्रांतियां मिटाने में योगदान दे रहे हैं, जीवन जीने का ढंग बता रहे हैं कि जीवन किसको कहते हैं, जीवन की सार क्या है। तो ये ढंग जीकर संसार को भी बताते चले जा रहे हैं कि किस जीने को जीना कहा जाता है, किस जीवन को जीवन माना जाता है, वो जीवन के सलीके भी, वो ढंग भी ये जीकर बता रहे हैं कि वाकई ही जीना वो जीना होता है जो परोपकार करते हुए जिया जाता है, जो भक्ति करते हुए जिया जाता है, जो दूसरों को एक सुख देकर जिया जाता है, जो दूसरों के काम आकर जिया जाता है, जो प्रेम करते हुए जिया जाता है, जो सबर संतोष करते हुए जिया जाता है, वो जीवन जीवन कहलाता है। और अगर ऐसा जीवन नहीं जिया जा रहा तो उसको कहा जाता है कि वो तो जिंदा दरगोर हैं, चलती फिरती लाशें हैं। तो ये जीवन प्राण जिसको कहते हैं कि प्राण असल में प्राण मिले हुए हैं, जो जीवन जिसको जीवन कहा जाता है उसको प्राण मिले हुए हैं, शरीर वाले प्राण नहीं, जीवन वाले प्राण, जो जीवन को प्राण मिले हुए हैं। शरीर को प्राण तो मिले हुए हैं, जो जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उनके प्राण हैं। और उसी जो प्राण ले रहे हैं, जीवित हैं, लेकिन असल जीवन नहीं मिला, उन्हीं को कह रहे हैं कि हे प्राणी, प्राणी तू आयो ला लैन, लगा कित फकड़े सब मुक्ति चले जैन। कि हे प्राणी, हे जीवन को जीने वाले, ये दिल की धड़कन जिनकी है, ये नबज़ और सांसें चल रही हैं, हे प्राणी तू आयो ला लैन, कि तू लाभ लेने आया इस संसार में, लेकिन लगा किस तरफ है, कि लगा किच को फकड़े सब मुकदी चली रहन। कि ये तो समय बीता चला जा रहा है, ही हाथों से छिनता चले जा रहा है, हे प्राणी लाभ ले ले, अपने जीवन के मनोरथ को पूरा कर ले, आत्मा का उद्धार कर ले, अपने जीवन को सही ढंग से जी ले, ये जीवन जीने का सलीका प्राप्त कर ले, ताकि बाकी जितने भी सांस मालिक ने बख्शे हैं वो तमाम सांस तेरे ऐसी भावना से युक्त होकर तय होते चले जाएं। एक सही मायनों में ये जीवन तू बाकी का जी ले। इस तरह से महापुरुष संत जन भक्त जन ये संदेश, ये पैगाम ये देते चले जाते हैं, ये एक संसार को जीवन जीने का ये सलीका बताते चले जाते हैं कि हे इंसान, तेरे इस संसार में तेरा महत्व बने। तेरा महत्व बने का मतलब फिर से वही आएगा कि तेरा महत्व कोई जायदादों के कारण नहीं, कोई हुकूमतों के कारण नहीं, कोई तेरी सुंदरता के कारण नहीं, कोई कीमती लिबासों के कारण नहीं, कोई इल्मों के कारण नहीं। तेरा महत्व एक सही इंसानी जीवन जीने के कारण, वैसा महत्व बना ले, वरना तो वो बाकी सब कुछ होते हुए भी महत्व नहीं बनते हैं। सुंदरता है लेकिन महत्व नहीं बनता है, दौलत है महत्वपूर्ण नहीं है, हुकूमत हाकम है तो महत्वपूर्ण नहीं है, हिटलर जैसे बाज जो हुकूमत करने वाले कैसे कैसे जुल्म किए, आज तक रूह कांप जाती है जो कोई वो दृश्य देखता है कि किस तरह से यहूदियों के ऊपर, ज्यूस के ऊपर जो जुल्म किए गए, एक वो दृश्य देखे भी नहीं जाते हैं। तो क्या वो महत्वपूर्ण था, वो हुकूमत महत्वपूर्ण थी? दौलत वाले कितने हुए तो महत्वपूर्ण हुए क्या? खूबसूरतियों वाले कितने छल गए तो उसका क्या महत्व रहा? तो इस प्रकार से एक महत्ता जो हुआ करती है जीवन की महत्ता, वो इस अवस्था के कारण है कि वाकई महत्व बन जाए तुम्हारे जीवन का। तुम्हारा संसार में आना मुबारक हो, तुम्हारा संसार में रहना मुबारक हो, वरना तो वही पंक्ति ध्यान में आती है कि किस तरह से जैसे कोई आके भी आया ना हो, कि कई आके आया ना हो, जैसे हम इस संदर्भ में जो बात चल रही है कि संसार में आए भी, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी यही बात कहते कहते ध्यान में आ रही है कि कई आते भी हैं लेकिन ना आने के बराबर होते हैं, कई होते हैं। एक पीछे भी कोई ऐसा ही दृश्य देखा जो छपा हुआ था और उसमें यही छपा हुआ था, वही देखने को मिला कि चंद ग्रैंड चिल्ड्रन अपने ग्रैंड मदर को मिलने गए हैं, और वो दृश्य में क्या दिखाया गया है कि वो पांच ग्रैंड चिल्ड्रन वो बैठे हुए हैं, लेकिन हर कोई मोबाइल की स्क्रीन में, और वो बेचारी ग्रैंड मदर तरस रही है मेरे से बात करें, मेरा हाल चाल पूछें। तो वो आना भी क्या आना हुआ। तो वही बात कि कोई आके भी आए नहीं, और दूसरी तरफ कोई जाके भी गया नहीं, कि उनका अमर रहता है नाम संसार में, कि उनका इस संसार में आना, दिलों में स्थान बनाना। दिल में जब स्थान बन गया, दिल तो अपने पास ही है, अगर वो चला भी गया तो दिल में तो वो कायम ही है। तो इस प्रकार से कई आके भी आते नहीं हैं, और कोई जाके भी जाते नहीं हैं। तो इस तरह से हर लिहाज से महापुरुष संत जन भक्त जन यही बात सबके मन में बिठाने के प्रयास करते हैं कि सबको ये बात समझें, ये एक सच्चाई के ऊपर आधारित है, ये हकीकत के ऊपर आधारित है, ये केवल तसव्वुर और ख्याली बातें नहीं हैं, ये केवल अज्ञानता के ऊपर आधारित मान्यताएं नहीं हैं, ये सब सत्य के ऊपर आधारित हैं। तो इसलिए सभी संसार के इंसान ये सत्य के ऊपर आधारित अपने जीवन को रुख दे दें, इस सत्य से नाता जोड़ लें, इस हकीकत को अपना लें, और उन्हीं सुंदर भावनाओं से युक्त होकर इस जीवन के सफ़र को तय कर लें। जो भावनाएं हमेशा ही महत्वपूर्ण मानी गई हैं, उनसे युक्त होकर ये जीवन जी ले, अपना ले, थाम ले दामन इन भावनाओं का, और तज दे दामन जिसका थामा हुआ है, जिसका दामन थामा हुआ है, वो जिसका दामन थामा हुआ है वो जिस तरफ जाते हैं उसी तरह लेके जाएंगे। कोई भी जा रहा हो उसका हम पल्लू पकड़ लें, दामन थाम लें, और वो जा रहा हो खाई पे से छलांग लगाने के लिए तो हमें भी तो साथ ही लेके जाएगा, क्योंकि दामन उसका थामा हुआ है, विपरीत भावनाओं का दामन थामा हुआ है। तो विपरीत जो है वो तो फिर दूर ही ले जाएंगे, वो तो गिराएंगे ही, हमें साथ लेके जाएंगे। तो इस प्रकार से दामन थामना है उन भावनाओं का जो ऊंचाइयों की तरफ लेके जाते हैं, जो हमारा मुख उजला करते हैं, जो दिलों में सत्कार पैदा करते हैं, जो सही मायनों में सम्मान हमें दिलवाते हैं, उनका दामन मजबूती से थामे हुए उस ओर बढ़ते ही चले जाएं। यही एक महापुरुष संत जन आप भी इस बात को समझते हैं और औरों की समझ को ये समझ प्रदान करते हैं। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा लिए बगैर इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा, यही अरदास प्रार्थना करेगा कि दातार कृपा करे कि यही बात हर किसी के मन में बैठी रहे, भक्तों के मन में भी मजबूती से बैठी रहे, हिंदुस्तान में रहने वाले या विश्व के अनेकों मुल्कों में जहाँ से समागम पर भी नुमाइंदगी हुई और आज भी आपने श्रवण किया, और इस प्रकार से ये समागमों की चर्चा तो और समागमों के दृश्य यहाँ भी हो रहे हैं, विश्व में भी हो रहे हैं, जो वहाँ के भी चर्चा जो अगले बरस जो इंटरनेशनल समागम कनाडा में होने जा रहा है उसके भी चर्चे हो रहे हैं, उसके प्रति भी उत्साह लगातार दिन प्रतिदिन ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो दातार कृपा करे कि जैसे यहाँ समागमों पर सभी हुम आकर पहुँचते हैं, इसी तरह से उन मुल्कों में भी ऐसे ही विशाल नज़ारे बनते चले जाएं। सत्संग जी धन्य का।